ओम शांति। आप सभी के बीच मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इस कॉन्फ्रेंस के आयोजकों से का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उन्होंने मुझे आपसे मिलने का चांस दिया। और आज मुझे जो विषय दिया गया है वो है स्वस्थ एवं खुशनुमा जीवन जीने की कला। आप सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं, बल्कि हमारे सभी संतों का तो ये जीवन का कर्तव्य है, लक्ष्य ही ये है कि सारे विश्व को स्वस्थ बनाना और सुखमय बनाना। ऐसे हम लोगों का जीवन बन जाए कि हमारा जीवन कैसा बन जाए, जैसे कि स्वर्ग है। तो आज हम आपसे वही डिस्कस करेंगे जो पिछले लगभग 20 वर्ष में मैंने जो कार्य जो हमें भगवान ने उसके निमित्त बनाया और उसमें हमने क्या सीखा और कैसे हम सिंपल सिंपल बातें अपने जीवन में करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो आज हम आपको ये दर्शाएंगे कि आज के जीवन में, आज के संसार में दुनिया की हालत क्या है और हमें क्या करना है कि हम सभी स्वस्थ बन जाएं और सभी सुखी बन जाएं, अपना जीवन भी सुखी बनाएं और साथ साथ अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने शहर का या गांव का या फिर अपने देश का और सारे विश्व का स्वास्थ्य हम कैसे अच्छा बनाएं। अगर हम सही ढंग से उसको पालन, सुनने से कुछ फायदा नहीं होगा, सुन के अगर करेंगे तो फायदा होगा। ठीक है, तो आज हम आपसे इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो आर्ट ऑफ लिविंग, मतलब आर्ट ऑफ हेल्दी एंड हैप्पी लिविंग क्या होती है, उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, आज की दुनिया में जो आज की जो मॉडर्न हेल्थ केयर है, आज का जो हेल्थ का जो जमाना है, जहां पर हम हॉस्पिटल्स बहुत सारे बने हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स बने हैं, वहां पर जो भी इलाज होते हैं किसके इलाज होते हैं, सिर्फ बॉडी का इलाज होता है। मॉडर्न हेल्थ केयर क्या है, सिर्फ वन डायमेंशनल है, सिर्फ बॉडी का इलाज करती है। जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, जितने भी मेडिकल स्कूल हैं, चाहे भारत में, चाहे विश्व में, चाहे यूएसए में, यूके में, किसी भी देश में चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी आप चले जाएं, वहां पर सिर्फ बॉडी के बारे में पढ़ाया जाता है। चाहे एमबीबीएस करें, एमडी करें, डीएम करें, एफआरसीपी करें, एमसीएच करें, चाहे भारत की डिग्री हो, विदेश की डिग्री हो, सब में सिर्फ बॉडी के बारे में पढ़ाया जाता है। बॉडी के ऊपर रिसर्च होती है, बॉडी की दवाइयां बनती हैं, बॉडी के ऊपर ऑपरेशन होते हैं और बॉडी के ऊपर ही क्या करते हैं, जो भी काम, दवाइयां और सर्जरी सिर्फ बॉडी के ऊपर होती है। मन पे होती है कोई सर्जरी? मन का ऑपरेशन होता है क्या? होता है? मन की कोई गोली होती है क्या? कोई गोली नहीं होती। और आज हम जानते हैं सभी बीमारियां, लगभग सभी बीमारियां पहले मन में पैदा होती हैं, फिर बॉडी में पैदा होती है। जब तक हम मन का इलाज नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, बीमारियां खत्म नहीं होंगी। अभी हम एक बीमारी खत्म करते चार बीमारी नहीं पैदा हो जाती। तो आज आप देखेंगे कि आज की दुनिया में ना हम मन का इलाज कर रहे हैं ना आत्मा का इलाज कर रहे हैं। तो अब हम क्या करें, देखो हम आपको दिखाते हैं कि WHO को जानते हैं, सभी विश्व स्वास्थ्य संगठन, उन्होंने हेल्थ की परिभाषा क्या दी थी कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट जस्ट दी एब्सेंस ऑफ डिजीज आर इन्फर्मिटी। अर्थात स्वास्थ्य वो स्थिति है, स्वास्थ्य के चार पिलर्स हैं, चार स्तंभ हैं। एक तो हमारा शरीर है, ये बाहरी रूप है, शरीर हमारा स्वस्थ होना चाहिए, हमारा हम मानसिक तौर से स्वस्थ होने चाहिए, हम सामाजिक तौर से स्वस्थ होने चाहिए और हम आध्यात्मिक तौर से भी स्वस्थ होने चाहिए। ये WHO ये परिभाषा ने दी, WHO 1948 में ये परिभाषा स्वास्थ्य की दी थी। और खाली बीमारी को ना होना इसे स्वास्थ्य नहीं कहते। आज आपको कोई बीमारी, आप कहते मेरे को कोई बीमारी नहीं है, ये इसको हम स्वास्थ्य नहीं कहेंगे, क्योंकि आप कितनी सारी बीमारी घर है, आपको ब्लड प्रेशर के जीन्स माता पिता से मिले आपको पता नहीं है, आपको डायबिटीज के जीन्स आपके माता पिता से मिले आपको पता नहीं है, आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो रही है, किस दिन आपको हार्ट अटैक आएगा आपको पता नहीं है, किस दिन आपको पैरालिसिस का अटैक आएगा आपको पता नहीं है, कभी भी आ सकता है ना, किसी समय कौन सा इन्फेक्शन आपको हो जाएगा पता नहीं, आपकी बॉडी में ऑलरेडी है, किस दिन आपको पता लग जाएगा आपको अंदर कैंसर हो गया, आपको पता नहीं। कैंसर ऑलरेडी अंदर चल रहा है, हो रहा है, किस दिन बाहरी रूप में आएगा तो आपको पता नहीं है। तो आप कहेंगे मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूं, ऐसा गलत है। अगर हम देखें आज के समय में, आज के समय में लगभग 100 लोगों को 200 बीमारियां हैं, फिजिकल बॉडी की मैं बात कर रहा हूं। आज के समय में लगभग 14 लोगों को हार्ट की बीमारी है, जो हार्ट अटैक जिसे कहते हैं ना, आर्टरीज बंद हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है, एंजाइना होता है। लगभग 10% लोगों को डायबिटीज है, 40% लोग मोटे हैं, 25% लोगों को एसिडिटी की बीमारी है, 20% लोगों को हड्डियों की बीमारियां हैं, लगभग 10% लोगों को सांस की बीमारियां हैं, है ना, 5% लोगों को कैंसर है। अगर हम टोटल मिला के सब बीमारियां जोड़ लें तो हम पाते हैं कि 100 लोगों को 200 बीमारी है, लगभग हर आदमी को 2-2 बीमारी एवरेज में मिली है। ऊपर हार्ट डिजीज नंबर 1 किलर है, 100 में से 30 लोग हार्ट डिजीज से मरते हैं, हार्ट अटैक से ही मरते हैं। फिर फेफड़ों की बीमारी आप देख रहे हैं, वहां देख सकते हैं। फिर स्ट्रोक, पैरालिसिस की बीमारी, तीसरा कारण डेथ का वो है। चौथा डायरिया, लूज मोशन हो जाते हैं, डायरिया से लोग मरते हैं। पांचवा लंग्स में इंफेक्शन हो जाता है। छठा टीबी है। सातवां बच्चे 1 साल के पैदा होते ही मर जाते हैं। आठवां सुसाइड, आत्महत्या, लोग ये बहुत बड़ा कारण है आत्महत्या, आज आत्महत्या बहुत बढ़ती जा रही है। नौवां कारण रोड एक्सीडेंट्स है और 10वां कारण डायबिटीज है। तो मुख्य 10 कारण ये हमारे हैं जिससे मृत्यु होती है। और आज की अगर मानसिक स्वास्थ्य देखें तो कैसा है, आज 100 में से 20 लोग डिप्रेशन में है। मैं तो अभी ऑस्ट्रेलिया गया था, ऑस्ट्रेलिया में हालांकि ये कंट्री बहुत डेवलप्ड है, बहुत पैसा है वहां पर, 1/4 लोग डिप्रेशन में है, 25% हर चौथा आदमी डिप्रेशन में है। लगभग 10% लोग दवाइयों पे हैं, दवाई खाते हैं डिप्रेशन की। 10% लोग दवाई खा के सोते हैं, उनको नींद नहीं आती है। चिंता सभी को है, आप में से कितने लोग जिनको चिंता कभी नहीं होती, हाथ उठाएं, जिनको कभी भी चिंता नहीं होती हाथ उठाएं, सच सच बताना, कोई चिंता नहीं होती। वेरी गुड, चलो एक ने तो हाथ उठाया, ताली बजाएं सभी उनके भी। एंगर, गुस्सा सभी करते हैं, आप में से कोई ऐसा जिसको गुस्सा कभी ना आता हो, कभी गुस्सा ना आया आज तक, कभी गुस्सा नहीं किया, एक ने आधा हाथ उठाया, चलो आधे के लिए भी हाथ है, वेरी गुड, पूरा हाथ उठाया, वेरी गुड। ग्रीड, लालच, लोभ, खाली पैसे का लोभ ना हो, खाली नाम मान शान का लोभ तो सबको होता है, मेरा नाम हो जाए, लोग मुझे पूछे, है ना, मेरी शान हो, ये भी बहुत बड़ा लोभ है। लस्ट, काम विकार सबके अंदर है। ईगो, अहंकार सबके अंदर है। अटैचमेंट, मोह सबके अंदर है। लेजीनेस, आलस्य सबके अंदर आ गया है। डर सबके अंदर है। आपको पता बीमारी शब्द कहां से आया, बीमारी शब्द बी माना डर और मानी मारी बना बने रहना। अगर आपके अंदर डर है तो आप बीमार हैं। सिनिसिज्म, दूसरों में दोष निकालने की आदत, अपने दोष नजर नहीं आते, आज के इंसान को अपने दोष नजर नहीं आते, सारे दोष दूसरों में नजर आते। आपको पता है एक हंस होता है एक बगला होता है, दोनों कैसे रंग के होते हैं, सफेद रंग के होते हैं, किंतु हंस के सामने आप 99 कीड़े रख दीजिए, कीड़े समझते हैं ना, कीड़े वॉर्म्स हो, और बीच में एक मोती रख दीजिए, तो हंस को सिर्फ मोती नजर आता है, कीड़े नजर नहीं आते, वो सिर्फ मोती खा लेता है। और एक बगला होता है, बगले के सामने 99 मोती रख दीजिए और बीच में कीड़ा रख दीजिए, तो बगले को मोती नजर नहीं आते, क्या नजर आता है, कीड़ा नजर आता है। तो आज के इंसान की दृष्टि बगला दृष्टि हो गई है, हंस दृष्टि नहीं रही है। सबके दोष अपने साथियों में, अपने घर वालों में, पत्नी अपने पति में, पति अपनी पत्नी में, क्या 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 ढूंढता है, क्या देखता है, उसमें 90 अच्छी बातें हैं, 10 बुरी बातें हैं, तो उन 10 बुरी बातों को ही देखता रहता है, देखती रहती है। इस कारण आज का घर नरक बन गया, घर घर में झगड़े हैं, दोस्तों में झगड़े हैं, भाई बहनों में झगड़े हैं, भाई भाई में झगड़े हैं, उसका कारण यही है। इसको बोलते हैं सिनिसिज्म। फिर हॉस्टिलिटी, रिवेंजफुल बिहेवियर, एक बहुत बड़ा कारण है हार्ट की बीमारी का। और टाइप ए बिहेवियर, टाइप ए माना हर समय हर काम में जल्दीबाजी करना, प्रेशर में रहना, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, आज के समाज में एक बहुत बड़ा कारण है बीमारी का, बहुत बड़ा कारण है। परफेक्शन का प्रेशर, फिर आज का प्रेजेंट सिनेरियो कैसा है, सामाजिक हेल्थ कैसी है, हेट्रिड, जेलेसी, कॉम्पिटिटिवनेस, थेफ्ट, डकॉइटीज, रेप्स एंड मर्डर्स। आज समाज में भाई को भाई से ईर्ष्या है, जलन है, पड़ोसी को पड़ोसी से जलन है, कंपटीशन है, चोरी, डाके, बलात्कार और मर्डर्स आप वो सुनते हैं अखबारों में, आज की हालत ये है। और स्पिरिचुअल हेल्थ कैसी है, आज सब लोग लड़ रहे हैं आपस में ईगो के कारण, आइडेंटिटी क्राइसिस है, पति पत्नी, भाई भाई, माँ बाप बच्चों से, बच्चे माँ बाप से, समाज में नेता नेताओं से, है ना, कोई भी किसी को देख के खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं समझते कि हम एक ही बाप के बच्चे आत्माएं हैं, सब लड़ रहे हैं, कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, कोई अपने को हिंदू समझ के, मुसलमान समझ के, इन बातों में ही क्रिश्चियन या सिख समझ के, वो देह के धर्म है, किंतु आत्मा का धर्म सिर्फ शांति है, आत्मा का धर्म सिर्फ प्यार है, खुशी है, उस धर्म को रियलाइज ना करके शरीरों के धर्म के कारण आपस में झगड़े हो रहे हैं। और आतंकवाद सारे विश्व में एक प्रॉब्लम है, सबसे नंबर वन प्रॉब्लम आतंकवाद है, उसका सोल्यूशन कमांडोज नहीं है, उसका सोल्यूशन है आप स्कूल कॉलेज में बच्चों को बचपन से ही क्या दें, स्पिरिचुअलिटी की एजुकेशन दें कि हम एक ही पिता के बच्चे, सब आपस में आत्माएं है, भाई भाई हैं, तो ये तभी टेररिज्म आतंकवाद खत्म हो सकता है। तो ये जो है आज की स्टेटस है हेल्थ की, ना कोई फिजिकली हेल्थी है, ना शारीरिक तौर से हेल्दी है, ना मानसिक तौर से हेल्दी है, ना सामाजिक तौर से हेल्दी है, ना आध्यात्मिक तौर से हेल्दी है, चारों ही पिलर सड़ गए। एक टेबल के चार चार पिलर्स होते हैं ना, चारों ही खराब हो गए। इसलिए क्या हो रहा है, जीवन कैसा हो रहा है, सबका हिल रहा है। कोई भी व्यक्ति, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, सभी हिल रहे हैं। और खुशी क्या चीज है, खुशी जो है कोई बाहर की चीज नहीं है, हंसने को खुशी कहते हैं क्या? आप सभी ने रामायण देखा होगा, रामायण सीरियल देखा होगा, रामायण में, सारी रामायण में हंसता कौन रहा और मुस्कुराता कौन रहा, बताइए, हंसता कौन रहा और मुस्कुराता कौन रहा? क्या राम एक बार भी हंसा जोर से, रावण को मारने के बाद हंसा? एक बार भी नहीं हंसा, पूरी रामायण में एक बार भी राम राम, राम नहीं हंसा, और रावण सारा टाइम हंसता ही रहा। तो हंसना अच्छी बात है या बुरी बात है? हंसना अच्छी बात नहीं है। आज लाफ्टर क्लब में लोग पार्क में लाफ्टर क्लब में बड़े जोर जोर से हंसते हैं, और बाहर आते थे लड़ना शुरू कर देते हैं, हमने बहुत बार देखा है। उस हंसने से कोई फायदा नहीं है, मुस्कुराना चाहिए, मुस्कुराना अंदर की चीज है। और हैप्पीनेस, खुशी की एक अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा क्या है, जिसको विश्व में सभी लोग मानते हैं, क्या परिभाषा है? हैप्पीनेस इज एन इनर स्टेट ऑफ बीइंग एंड इट कम्स फ्रॉम इनर सेटिस्फेक्शन एंड कंटेंटमेंट। खुशी अंदर की बात है। कैसे आती है, कब आती है? जब आप अंदर से संतुष्ट होते हैं, अंदर से संतोष आपके पास है, तो आप खुश होते हैं। संतोष सबसे बड़ा धन है, कहते हैं ना, जिसके पास संतोष है उसको कुछ भी नहीं चाहिए, जिसको कुछ चाहिए वो कभी खुश नहीं रह सकता है। ठीक बात है, गलत बात है? जिसको कुछ चाहिए वो खुश रह सकता है? वो खुश नहीं रह सकता है। जो संतुष्ट है जीवन से, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो खुश है। तो ये परिभाषा, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन, खुशी अंदर से आती है, बाहर से नहीं आती है। इसको हम बाहर ढूंढते रहते हैं, कोई खाने में ढूंढता है, कोई फिल्मों में ढूंढता है, कोई बाहर हिल स्टेशन पे ढूंढता है, कोई कहीं ढूंढता है, कोई विदेशों में जाके ढूंढता है। खुशी बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। हैप्पीनेस इज नॉट ए प्लेस। कोई कहे मैं स्विट्जरलैंड चला जाऊं तो मैं खुश हो जाऊं, मैं अमेरिका चला जाऊं तो खुश हो जाऊं, नहीं, वो जगह नहीं है खुशी। खुशी क्या है? एक डायरेक्शन है। अगर उस डायरेक्शन में हम चलेंगे तो हम खुश रहेंगे, एक अच्छे मार्ग पर चलेंगे तो हम खुश रहेंगे। आज लोग कहां पर है, आजकल प्रेजेंट स्टेटस ऑफ हैप्पीनेस क्या है? आजकल फिजिकल हैप्पीनेस में लोग खोए हैं, भौतिक खुशी ढूंढते हैं। कहां पर, किस चीज में? ईटिंग वैरायटी ऑफ जंक फूड्स, पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, नरूला में आइसक्रीम जाके खाते हैं, इसी को खुशी समझते हैं। कोई कोई बढ़िया बढ़िया चीज गिफ्ट एक दूसरे को देते हैं, इसको खुशी समझते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, टीवी देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, इसको इसको ये फिजिकल भौतिक सुख वाली खुशी है। एक मेंटल हैप्पीनेस, लोग हंसते हैं, लाफ्टर क्लब में जाके हंसते हैं, उसको खुशी समझते हैं, नॉवेल्स पढ़ने में खुशी समझते हैं, कुत्ता बिल्ली को प्यार करने में खुशी समझते हैं। कुत्ते बिल्ली को प्यार करने में खुशी है, इंसानों को प्यार नहीं करते, आपस में प्यार नहीं करते, कुत्ते को प्यार करते हैं। देखो कैसा जमाना है ना, पति पत्नी से लड़ता है, पत्नी पति से लड़ती है, वो बिल्ली को प्यार करती है, वो कुत्ते को प्यार करता है, आपस में प्यार नहीं, प्यार से नहीं बोलेंगे। डेकोरेशन करने में खुशी समझते हैं, और फैशन करने में खुशी, मन में खुशी होती है, फैशन करके मन में खुशी होती है, और चेहरे पे खूब सारा क्या लगाते हैं, क्या चेहरे पे हाथ पैरों में क्या क्या क्रीम लगाते हैं, कौन कौन सी क्रीम लगाते हैं पता नहीं है ना, क्या क्या पैक लगा के आते हैं ना, फेशियल पैक लगाते हैं ना, डेकोरेशन करके फेस की भी डेकोरेशन करते हैं। फेस की डेकोरेशन क्या है सबसे अच्छी, मुस्कुराना है ना, स्माइल। वो नहीं करते, वो कोई नहीं करता है, वो भी आर्टिफिशियल करते हैं, करते तो नहीं, नेचुरल मुस्कुराते हैं लोग आजकल, मतलब से मुस्कुराते हैं। सोशल हैप्पीनेस क्या है, पार्टीज में जाते हैं लोग, अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, दूसरे सीनियर सिटीजन होम में जाके दूसरे बूढ़ों की सेवा करते हैं, अपने माँ बाप को गाली दे देते हैं, माँ बाप को छोड़ दे, केयर नहीं करेंगे, और सीनियर सिटीजन होम में जाके दूसरे बूढ़ों की सेवा करेंगे, अच्छी बात है ना। ऑर्फनेज, अकाल जहां वो बच्चे होते हैं ना, अनाथ बच्चों की जाके सेवा करेंगे, इसको समझते हैं हम सामाजिक खुशी पैदा कर रहे हैं। हॉस्पिटल में जाएंगे, और जेल्स में, जो जेल में पड़े हैं उनके जिनके पास जाएंगे, उनको गिफ्ट देके आते हैं, कोर्ट में जाते हैं। स्पिरिचुअल हैप्पीनेस किसे समझते हैं, मंदिर बना देने को खुशी समझते हैं, है ना, और मंत्र समंत्र पढ़ने को खुशी समझ लेते हैं, और क्या करते हैं, यात्राओं पर चले जाएंगे, मतलब डोनेशन देने को खुशी समझ लेते हैं, है ना, इसको ही खुशी समझ लेते हैं। सच्ची खुशी क्या है किसी को पता नहीं है। प्रेजेंट स्टेटस ऑफ हैप्पीनेस इज आउटर हैप्पीनेस, ये बाहर की खुशी है, और ट्रांजिटरी हैप्पीनेस, थोड़ा समय रहती है फिर निकल जाती है, अंदर की हैप्पीनेस नहीं है, अंदर की खुशी सदा रहती है। इज इट हैप्पी लाइफ, क्या इससे खुश है, मुझे पता है आज दुनिया में कोई खुश है, आप क्या समझते हैं, नेता खुश है, नरेंद्र मोदी जी खुश है, राहुल गांधी खुश है, वो कौन सा है हमारे जो है ना, कौन से वाले हैं वो हमारे, अंबानी ब्रदर्स खुश है, बिरलास खुश है, पैसे वाले भी खुश नहीं है, नेता भी खुश नहीं है, अभिनेता भी खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है। क्या करें अभी, हम कहां जाएं, हेल्दी भी कोई नहीं है, खुशी भी कोई नहीं है, फिर क्या करें, क्योंकि हैप्पीनेस कहां से आती है, प्योरिटी ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट से आती है, शांति से आती है, खुशी से आती है, और किससे आती है, जब आप निर्भय होते हैं तो आती है, सहन शक्ति से आती है। आज का इंसान कैसा है, गुब्बारे जैसा है, गुब्बारा होता है ना, गुब्बारे में हवा भरते जाओ तो क्या होता है, गुब्बारा फूल के बड़ा होता जाता है। एक आदमी पिन लेकर के आता है, पिन चुभो देता है गुब्बारे में, तो क्या होता है, गुब्बारा कैसा हो जाता है, पिचक के छोटा सा हो जाता है ना। आज का इंसान भी ऐसा ही है, किसी इंसान में जीवन में टेस्ट ना आए, पेपर ना आए, और वो लोग उसकी महिमा करते रहे, तो फूल के गुब्बारे जैसा मोटा हो जाता है, कुप्पा हो जाता है, और कोई आदमी आ जाए उसकी बुराई कर दे तो क्या होता है, इतना सा मुंह हो जाता है। आज की खुशी ऐसी है ना, अगर आप सदा खुश रहना चाहते तो आपको सहन शक्ति बनानी होगी, अपने अंदर सहन शक्ति पैदा करनी होगी। जो सरल स्वभाव के लोग होते हैं सदा खुश रह सकते हैं, जो लोग मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए, वो व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता। इजी नेचर वाले खुश रह सकते हैं, जो मीठा बोलने वाले वो खुश रह सकते हैं, कड़वा बोलने वाले कभी खुश नहीं रह सकते, जिनकी दिल बड़ी है वो खुश रह सकते हैं। दिल बड़ी का मतलब क्या है, ये दिल बड़ी होगी, ये दिल बड़ी होगी सांस फूल जाएगा बहुत ज्यादा, ये दिल बड़ी की बात नहीं है, कौन सा दिल बड़ी है, ये दिल आत्मा का दिल बड़ा होना चाहिए, राइट, मतलब हम दूसरों की गलतियों को समा सकें। हम सब गलतियां करते हैं, और दूसरों की गलतियों को समा लेने से हमें ऐसा लगेगा कि हम उसे कहेंगे बड़े दिल वाले, है ना। एम्पैथी, जो रहम करते हैं दूसरों पर, वो खुश हो सकते हैं, जिनके पास सच्चा प्यार है। आज का प्यार कैसा है, कैसा प्यार है दुनिया में, स्वार्थ का प्यार है ना। सच्चा प्यार क्या होता है, सच्चा प्यार क्या होता है, जैसा भगवान हमसे प्यार करते हैं ऐसा प्यार, उस पर हम बाद में बात करेंगे। सेक्रीफाइस जो त्याग करते हैं वो खुश, जो संतुष्ट रहते हैं वो खुश रह सकते हैं। तो मैं इसके बाद मैं इसके आज सारे संसार में 95% बीमारियां स्ट्रेस से रिलेटेड, तनाव से रिलेटेड है या साइकोसोमेटिक है, मतलब पहले मन में आती फिर बॉडी में आती है। सॉल्यूशन क्या है, क्या करें हम, कहां जाएं? आज डॉक्टर्स देखो, इसमें देख रहे हैं आप इस स्लाइड में देखेंगे, डॉक्टर्स को ज्यादा ब्लड प्रेशर है, ज्यादा डायबिटीज है, ज्यादा हार्ट की बीमारी हो रही है। डॉक्टर्स दूसरों को पढ़ाते हैं किंतु खुद अपने आप वैसे कर्म नहीं करते हैं। जो डॉक्टर कॉन्फ्रेंस में, हार्ट की कॉन्फ्रेंस में, लोग सब डॉक्टर्स को बता करके आता है हमें ऐसा खाना खाना चाहिए, लो फैट हाई फाइबर, शाकाहारी भोजन करना चाहिए, फल खाने चाहिए, सब्जियां खाने चाहिए, तली चीज पराठा पकौड़ा नहीं खाना चाहिए, मिठाइयां नहीं खानी चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। वही डॉक्टर आप लंच टाइम में देखेंगे सबसे पहले नॉनवेज की लाइन में वही लगा होता है। तो आज ये जमाना है, कहते कैसे कुछ है कुछ और है, करते कुछ और है। तो जब तक हमारे कथनी और करने की जैसी नहीं होगी तब तक हमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो डॉक्टर्स भी अपनी हेल्थ की केयर नहीं कर पाते हैं। और बीमारी कैसे आती है, मैं समझता हूं इसके पहले मैं आपको आगे बढ़ूं, मैं चाहूंगा हमारे एक दिल वाले ना, जिन उन्होंने इस बीमारी, इस हार्ट के पेशेंट कैसे उन्होंने अपनी बीमारी को ठीक किया है, सतरण भाई आप आ जाओ ऊपर, कैसे उन्होंने अपनी हार्ट की बीमारी को ठीक किया इस जीवन शैली को अपना करके जो हम सिखाते हैं यहां पर, राजयोग मेडिटेशन के द्वारा, शुद्ध सात्विक भोजन के द्वारा और शुद्ध सात्विक सैर, समय पर सोना, समय पर उठना और शराब सिगरेट छोड़ देना, कैसे छोड़ देना, उनका जीवन कैसे बदल जाता है उसके एग्जाम्पल मैं आपके सामने पेश करता हूं। ये इनको माइक दे दीजिए, ये सत्यनारायण भाई हैं, हैदराबाद के हैं, इनकी लैंग्वेज थोड़ी हैदराबादी है किंतु आप ध्यान सुनेंगे तो आपको बताएंगे कैसे वो बीमार थे, क्या तकलीफ थी और कैसे वो ठीक हुए और आज उनका जीवन कैसा है। सुनिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सुनिए, कैसे एक आदमी स्वस्थ और खुशनुमा जीवन जी रहा है जो पहले बिल्कुल सदा बीमार रहता था और हर तरह से सब सब गंदी आदतें उनके अंदर आ गई थी। सुनाइए बताइए।
ओम शांति। मैं एक आत्मा हूं, मेरा शरीर का नाम सत्यनारायण है, मैं हैदराबाद का रहने वाला हूं। मैं लौकिक में इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड में 30 साल सर्विस किया। उस समय मैं सर्विस करते हुए मैं फाइनेंस और चिटफंड चलाता था, तो मेरे को फर्स्ट टाइम 99 दिसंबर 28 तारीख को फर्स्ट टाइम हार्ट अटैक आया। तो उस समय मुझे आधी रात को हार्ट अटैक आया तो हॉस्पिटल में भर्ती किए, फिर 4 तारीख जनवरी को एंजियोग्राम किए, 6 तारीख जनवरी को एंजियोप्लास्टी किया, स्टेंट डाल दिए। फिर 2004 में मुझे बाईपास सर्जरी हुआ, फिर हार्ट अटैक आया था
5 जनवरी 2005 2000 में इनको एंजियोप्लास्टिक एंजियोग्राफी में देखा गया, इनके ब्लॉक्स हैं और 6 तारीख को इनकी एंजियोप्लास्टी की गई और फिर 2004 में इनको बाईपास कराना पड़ा। हाँ जी बताइए।
2004 में फिर मेरे को आधी रात में फिर हार्ट अटैक आया, फिर हॉस्पिटल में गया तो फिर वहां पे मेरे को नेक्स्ट डे एंजियोग्राम करके बताया कि आपको बाईपास सर्जरी करना है, बोले 2,00,000 रुपए जमा करो। तो मैं बोला अभी देखेंगे, अभी तो पैसे नहीं है, बोल के वहां से डिस्चार्ज कर लेके फिर दूसरे हॉस्पिटल में मैं इंक्वायरी किया बाईपास करना चाहिए क्या, बोल के 4-5 हॉस्पिटल में फिरा तो सभी डॉक्टर बताए कि बाईपास सर्जरी करना है। तो फिर मैं 2004 मार्च में हैदराबाद में बाईपास सर्जरी कर लिया। बाईपास सर्जरी होने के बाद से फिर मेरे को 2 महीने के बाद मेरे को छाती में बहुत तकलीफ हो रहा था, सोने से मेरे को बहुत दर्द हो रहा, बैठे बैठे सोना हो रहा, बहुत तकलीफ हो रहा। तो फिर डॉक्टर के पास गए तो उसने चेकिंग पूरा करके बताया कि आपको फिर एक बार स्टेंट डालना, बोले। मैं बोला एक बार स्टेंट हो गया, एक बार बाईपास हो गया, फिर अभी 3 महीने के अंदर फिर स्टेंट डाल दो, बोल रहे आप जो है ना मेरे को बाईपास ठीक नहीं किया मेरे को, इसीलिए ऐसा तकलीफ हो रहा, बोला। और बोला वो डॉक्टर 1,00,000 रुपए जमा करना। मैं बोला 1,00,000 रुपए नहीं देता, कुछ नहीं, मैं आप फ्री में डालना। जरा मेरा स्टाइल कैसा रहता था बोले तो जरा रुबाब का टाइप रहता, दादागिरी टाइप रहता था। उसको डॉक्टर को ही डांटना शुरू कर दिया, मैं पैसे नहीं दे तुम बोल के। फिर बोला कम से कम आधा पैसे दो, 50,000 दिए तो हम स्टैंड डालेंगे। तो फिर मेरा तकलीफ मेरे को है बोल के फिर 50,000 दे के फिर मैं स्टैंड डाल लिया। स्टैंड डालने के बाद फिर ठीक हो गया, फिर से ऐसी हो गया। फिर 2007 में फिर मेरे को छाती में तकलीफ हो रहा, तो फिर मेरे को डॉक्टर के पास गए तो फिर वो बोला फिर और एक स्टैंड डालना अभी आपको बोला। मैं बोला एक बार स्टेंट हो गया, बाईपास हो गया, फिर स्टेंट हो गया, फिर अब स्टेंट बोल रहे 3 साल में एक बार स्टेंट डालते रहना क्या बोल के। बोले तो आप फिर क्या करेंगे, आपके आदत है वैसे। मैं जब रोज शराब पीता था, शराब के साथ रोज मास्क आता था, मैं 18 किस्म का मास्क आया, और रोज रात में शराब पीने के बाद जो पैसे देने वाले रहते सताते ना, उनके पास जाके पैसे के लिए गए तो कई कई एक एक जगह लड़ाई झगड़ा होता था, मारम पीटी होता था, पुलिस केस भी होते थे। मेरे सब अच्छे आदतें नहीं थे, बुरे बुरे आदतें थे सारे। मुझे मारम पीटी करना, पैसे वसूल करना, ऐसा धंधा करता था। तो डॉक्टर बोला फिर तुम्हारे को ऐसे आदत, हमारे बच्चे भी बहुत कंप्लेंट करते थे। मैं कहीं भी रिश्तेदारों के पास गया, कहीं भी गया तो वहीं पी के वहीं आउट हो जाता था, फिर बच्चे आके मुझे उठा के लेके जाते थे घर पे। तो भैया 2007 में फिर स्टेंट डालना बोले तो मैं नहीं डालवाया। फिर एक दिन मैं ऐसी वॉकिंग कर रहा तो एक भाई ये मेरे को पर्ची दिया, फलानी ब्रह्म कुमारी आश्रम में भगवद गीता ज्ञान सुना रहे बोल के उसमें लिखा हुआ है। मैं गया 25 नवम्बर 2007 में गीता ज्ञान सुना जाके। गीता ज्ञान सुने तो वहां मुझे समझ में आया कि मैं आत्मा हूँ, आत्माओं का बाप परमात्मा, परमात्मा आया है स्वर्ग स्थापना करने। अब मैं समझ में डिसाइड कर लिया मैं स्वर्ग में जाना, कोई भी काम मिले स्वर्ग में, मुझे टॉयलेट साफ करने की नौकरी मिले तो भी मैं स्वर्ग में जाना बोल के डिसाइड कर लिया। फिर मैं नेक्स्ट डे से 26 तारीख से फिर मैं कोर्स किया। कोर्स करने के बाद रेगुलर मुरली सुनने गया, सुबह शाम मुरली सुन रहा था। फिर वैसे ब्रह्मा बाबा का जीवित चरित्र का किताब लिया, वो किताब पढ़ते रहा दिन में। तो फिर मेरे को बहुत उसमें से बहुत टचिंग होने लगी, ये सब बुराइयां छोड़ना, ये छोड़ना बोले तो मैं 1 महीने के अंदर सारे बुराइयां छोड़ दिया। जितने बुराइयां मुझ में थे सारे बुराइयां छोड़ दिया। और एक बाटल फड़ी हुई थी घर में तो मैं उसको 23 दिसंबर 2007 में अभी उस टाइम धीरे धीरे मैं जब कोर्स किया तो मेरे को पीने का खाने का इच्छा नहीं रह रहा था। तो एक बाटल वो घर में था तो उसको 23 दिसंबर 2007 में उसको खत्म कर दिया। फिर कभी उसको टच नहीं किया। फिर एक दिन हमारा लौकिक बहन पूछा मेरे को तू कौन सा ब्रांड पीता हो, उसका नाम बताओ बोला। मुझे वो ब्रांड का नाम ही याद नहीं रहा। मैं फिर 1 महीने के अंदर सारे बुराइयां छोड़ दिया। मैं रेगुलर मुरली क्लास में जाता हूं, अभी तक मैं एब्सेंट कभी नहीं हुआ। कितना भी बारिश होने दो, कुछ भी होने दो, मैं क्लास जाता हूं। क्लास जाके फिर फर्स्ट सीट में बैठता हूं मैं। हमारे सेंटर में हमारे टीचर बहन बोलते ये रेगुलर स्टूडेंट है, ये रेगुलर स्टूडेंट है बोलते। मैं ओडिशा में हमारा लौकिक बेटी रहती थी वहां भी जाता था तो वहां भी टीचर बहन बोलते थे कि रेगुलर स्टूडेंट है बोल के। जब बाबा मुझे मिल गए तब से मैं सारे बुराइयां छोड़ दिया। और 25-26 साल हुआ मेरे को बैक पेन ऑपरेशन कर लेना बोले। तो उससे पहले मैं ज्ञान में आने के बाद 3 महीने के बाद हार्ट का प्रोग्राम हैदराबाद में चल रहा बोल के हमारे टीचर बहन बोले कि यहाँ पे अभी आपका हार्ट का प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे हैदराबाद में हार्ट का प्रोग्राम चल रहा, कैट प्रोग्राम, आपका एंजियोग्राम कराओ और पेपर भेजेंगे हैदराबाद। माउंट आबू से एक बड़े डॉक्टर साहब आ रहे, यहाँ पे हार्ट का प्रोग्राम चल रहा, आपका एंजियोग्राम कराओ बोले। तो मैं एंजियोग्राम कराया और पेपर हमारे सेंटर में हमारे दीदी को दिए तो दीदी भेज दिए। फिर हार्ट प्रोग्राम करने का मुझे चांस मिला हैदराबाद में। 2008 मार्च में मैं हार्ट का प्रोग्राम किया। ज्ञान में आने के बाद 3 महीने के बाद, तो भाई साहब डॉक्टर साहब बड़े डॉक्टर साहब ये हैदराबाद आए थे यहाँ से, तो इन्होंने मेरे को जैसा जैसा बताया पूरा वैसे ही फॉलो किया मैं। फॉलो होने के बाद फिर 8 महीने के बाद मैं एंजियोग्राम करवाया, मेरे जो डॉक्टर स्टेंट डालना बोले वो डॉक्टर बोला कि आपके ब्लॉकेज खुल गए, कैसा खुल गए बोले, तो मैं बोला ऐसा मैं ब्रह्म कुमारी आश्रम में जॉइन हो गया, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मेडिटेशन से मेरे ब्लॉकेज खुल गए बोल के मैं बताया, तो वो डॉक्टर भी बहुत खुश हो गया। और वो डॉक्टर साहब को भी मैंने एक शिव संदेश किताब दे के आया, और मेरे को 25-26 साल हुआ मेरे को ऑपरेशन कर लो बोले, बैक पेन कर ऑपरेशन कर लो बोले, मैं नहीं कर लिया था उस समय। तो फिर एक 4-5 साल पहले एक बार मैं कमर दर्द के लिए डॉक्टर के पास गए, तो वो बोला अब आप ऑपरेशन नहीं कर लिए, आप रेगुलर पेन किलर खाना। आप मेरे को कमर के दर्द के लिए मैं बहुत डॉक्टरों के पास गया, एलोपैथी होम्योपैथी ये सारे दवाइयां सारे खाया, मगर मेरे हार्ट के लिए उतना नहीं फिरा, कमर के लिए बहुत डॉक्टरों के पास गया। तो डॉक्टर बोला आप लाइफ लॉन्ग टैबलेट खाना बोला, मैं हमारे डॉक्टर साहब को बताया कि मेरे को ऐसा ऐसा बोल रहे बोले, तो अरे भाई आप तो हार्ट के ब्लॉकेज ओपन कर लिए, ये कमर दर्द भी ऐसी प्रयोग करो कमर दर्द ठीक हो जाता बोले। फिर मैं जैसे भाई साहब बताए वैसे फॉलो हुआ, अभी मेरा कमर दर्द भी ठीक है, मेरे को ज्यादा कोई तकलीफ नहीं है कमर में, अभी बिल्कुल मैं ठीक हूँ। हमारे लिए जब घर में लड़ाई होता था पीने के बाद, मैं पी के आके फिर आते आते शराब लेके आता था, मांस लेके आता था, अभी पकाओ बोलता था रात में, और कभी कभी सैटरडे है आज फ्राइडे है नहीं पकाते बोलते थे, तो लड़ाई होता था घर में। और रोज के 3 पैकेट सिगरेट पीता था मैं, गोल्ड फ्लैग, घर में पूरा धुआं धुआं भर देता था, बच्चे भी गड़बड़ करते थे, पूरा सिगरेट की धुआं भर देते आप पूरा गंदा करते ऐसा ऐसा बोल के। अभी मेरे लिए घर में बहुत खुशी है, मेरे लिए घर में कोई तकलीफ नहीं, अभी हम बाबा को चिपक गए, बाबा मुझे चिपक गया, ओम शांति।
इनको इनको ब्लड प्रेशर भी था, डायबिटीज भी थी है ना, वो भी ठीक हो गया साथ साथ, ब्लड प्रेशर डायबिटीज की बीमारी भी थी, उसकी दवाइयां भी कम हो गई, और साथ साथ अभी लोग आपको क्या कहते हैं, आपको लोग घर में क्या कहते हैं, अभी रिश्तेदार क्या बोलते हैं आपको?
अभी हम हमारे रिश्तेदार बहुत घर में आते थे, हमारे दोस्त भी बहुत रहते थे, अभी हमारे पास रिश्तेदार नहीं आते और दोस्त भी नहीं आते। अभी हमारे रिश्तेदार वालों के पास गए तो देवता आ रहा बोलते रहते, दोस्त लोग भी ऐसे ही बोलते रहते देवता आ रहा बोलते।
ओम शांति। तो समझा आपने कैसे एक आदमी जो शराब सिगरेट मांस तरह तरह के मांस खाता था, और लोगों से झगड़ा करना, पुलिस में केस होना, और उसकी एक एंजियोप्लास्टी हुई, फिर बाईपास हुआ, फिर एंजियोप्लास्टी हुई, उसके बाद फिर कहा आपको एंजियोप्लास्टी करानी है, और वो कैसी हालत में था और कैसे उनका जीवन बदल गया, यही राजयोग मेडिटेशन से, यही डाइट ये एक्सरसाइज फॉलो करने से, ये जीवन शैली परिवर्तन करने से उनका जीवन बदल गया। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है, ये मैं आपको सिखाता हूँ, बैठिए बैठिए। थैंक यू वेरी मच। मन क्या है, विचार क्या है, और ब्रेन में क्या फर्क है? ब्रेन तो हमारा हार्डवेयर है, इसका वजन 1200 ग्राम है। मन का कितना वजन होता है, मन का वजन कितना होता है? पर मैंने सुना है लोगों से, कई लोग कहते हैं आज मेरा मन इतना भारी है मैं बिस्तर से उठ नहीं सकता हूं, और कभी कभी लोग ऐसा भी कहते हैं आज मेरा मन इतना हल्का है मैं से हवा में उड़ रहा हूं, ऐसा कहते हैं नहीं कहते हैं? तो मन में 4 बातें होती हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं टीम, टी फॉर थॉट्स माना विचार संकल्प, ई फॉर इमोशंस माना भावनाएं, ए फॉर एटीट्यूड्स माना वृत्ति, और एम फॉर मेमोरी स्मृतियां। तो स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प 4 चीजें मन में होती हैं, और वो हमारे कैसे दिमाग पर असर डालती हैं, ये देखिए है, ये हमारा दिमाग है, आप देख रहे हैं, चलने दीजिए, हाँ जी, ये हमारा देख पा रहे हैं आप, ये हमारा जो बीच में देख रहे हैं आप ब्राउन रंग का, ये हाइपोथैलेमस है, दोनों ब्रेन का कंट्रोल रूम है, जो कुछ भी हम सोचते हैं वो केमिकल में बदल जाता है। जैसा भी भावना हमारे मन में होती है, गुस्से की भावना, चिंता की भावना, डर की भावना, वो केमिकल बन जाता है, और फिर ब्लड के द्वारा, खून के द्वारा हमारे, वो खून के द्वारा फिर हमारे सेल्स के ऊपर पहुंच जाता है। हर भावना के लिए, हर विचार के लिए केमिकल हाइपोथैलेमस में बनता है, और वो खून के द्वारा हमारे सेल्स पे पहुंच जाता है और हमारे सेल्स पे रिसेप्टर्स होते हैं। हर विचार के लिए हमारे केमिकल बनते हैं दिमाग में और वो एक सेकंड से भी कम समय में सारी बॉडी पर पहुंच जाते हैं। और जो हमारी बॉडी की सेल्स होती हैं, ये लाल लाल रंग के केमिकल्स हैं, वो केमिकल्स हैं और ब्लड के द्वारा पहुंच जाते हैं। आप देख रहे हैं अभी आने वाले, अभी अभी ये सेल्स हैं, ये देख रहे हैं जो मूव कर रही हैं, ये सेल्स हैं, ये कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं पे रिसेप्टर्स होते हैं ताला और चाबी की तरह से। ये जो जो केमिकल ऊपर से आते हैं वो इस पे चिपक जाते हैं ताले और चाबी की तरह से। जैसे ताला और चाबी होता है उसमें जाके जैसे लॉक चाबी लग जाती है और फिर सेल के अंदर रिएक्शन होती हैं। सेल के अंदर रिएक्शन होंगे जैसे खुशी का मौका हो या शादी का मौका हो या चिंता हमें लड़ाई हो, उसका विचार हम उसका असर हमारी सेल्स पे पड़ता है। जैसा विचार हम करते हैं उसका असर हमारी बॉडी पे जरूर पड़ेगा। और ये केमिकल जो दिमाग से आते हैं उनको बॉडी को फॉलो करना पड़ता है। जैसा भी इफेक्ट होगा, जैसा भी आप सोचेंगे, उसका असर बॉडी पे ना हो ये हो नहीं सकता है। इसलिए हम कहते हैं सोचने से पहले भी सोच लो। आप क्या सोच रहे हैं? ये केमिकल आके दिमाग से लग जाते हैं सेल के ऊपर और सेल के अंदर रिएक्शन हो जाने शुरू हो जाती है। जो कुछ हम सोचते हैं हमारी सेल्स पे उसका असर जरूर होता है। ये सेल्स दिखाई, डिफरेंट डिफरेंट तरह की सेल्स कोशिकाएं दिखाई हैं बॉडी में। हमारी शरीर 80,000 अरब कोशिकाओं से बना हुआ है। जैसे कोई आदमी खुश नहीं है तो खुशी खाने में ढूंढ रहा है। जैसे आप देखेंगे इस आदमी को, यह आदमी खुशी ढूंढ रहा है खाने में। तो जैसा आपका मन होता है वैसे आपके कर्म होते हैं, जैसे विचार करते हैं वैसे कर्म होते हैं। और जब हमारे कोई भी चीज कोई हमारे ऊपर, जैसे इसके ऊपर सॉस गिर गई, अब वो अंदर से बुरा मान रही है ना, रो रही है, तो उसकी बॉडी के जो दिमाग से हाइपोथैलेमस से वो केमिकल निकलेंगे और जैसे आप रोते हैं तो आपकी सेल्स भी रोती हैं, है ना? ठीक है, तो आप क्या करेंगे आगे से? सोचने से पहले भी सोचना है? इस छोटी सी फिल्म में यही बात दिखाई गई है। जो भी हम नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव भावना, नेगेटिव वृत्ति, नेगेटिव स्मृति, तो हमारे हाइपोथैलेमस से केमिकल्स निकलते हैं, उसको न्यूरोपेप्टाइड्स कहते हैं। एक सेकंड से भी कम समय में हमारे कोशिकाओं पे पहुंच जाते हैं और एक हमारे अंदर गर्म तार एक ठंडी तार है यहां से निकलती है। गर्म तार एक्टिव हो जाती है, टेंशन वाले हार्मोन निकलते हैं और आपके अंदर फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स चालू हो जाती है। अंदर फीलिंग ऑफ डिस ईज, सैडनेस, उदासी आ जाती है और एनर्जी खत्म हो जाती है। और इसकी बजाय अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो क्या होता है, आपके अंदर आपकी बॉडी की सेल्स और ब्रेन की सेल्स एंडोर्फिन निकालती हैं, मॉर्फिन निकालती है। मॉर्फिन ऐसा केमिकल है जो कि सबसे स्ट्रांगेस्ट जो पेन किलर है दुनिया में मॉर्फिन है। आपके अंदर मॉर्फिन बनती है। जब आप खुश रहेंगे, शांत रहेंगे, तो आपके अंदर से मॉर्फिन निकलेगी। और मॉर्फिन सब तरह के दर्द, चाहे हार्ट का दर्द हो, सिर का दर्द हो, कमर का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, पेट का दर्द हो, सारे दर्द खत्म हो जाते हैं और आप बहुत हल्का महसूस करते हैं। इससे आपकी हरी तार एक अंदर रिलैक्सेशन सिस्टम वो एक्टिव हो जाता है और आप अच्छा महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, आनंद महसूस करते हैं। तो मैं आपके सामने एक हमारे भाई हैं ज्ञान सिंह भाई, वो आपके सामने आएंगे, वो बताएंगे कैसे उनके जीवन में वो अफीम खाते थे, हार्ट के पेशेंट भी हैं और साथ अफीम भी खाते थे, कैसे उनकी अफीम छूट गई। और जैसे हमारे बॉडी में 8 अंग होते हैं, 8 अंग में से एक जन्म से ही अंग कमजोर होता है। ज्योतिषी लोग पहले लिखते थे ना, ये बच्चा उदर रोग से पीड़ित रहेगा, ये बच्चा हृदय रोग से पीड़ित रहेगा, ये बच्चा फेफड़ों के रोग से पीड़ित रहेगा, ग्रहों के हिसाब से। तो एक अंग जन्म से कमजोर है। जो कुछ हम गलत सोचते हैं, गलत सोचने की आदत पड़ जाती है, गलत भावनाएं हमारे अंदर घर कर जाती हैं, तो वो अंग पे उसका जोर पड़ता रहता है और इस तरह से हमारा वो अंग खराब हो जाता है, हार्ट की आर्टरी बंद हो जाती है या कैंसर हो जाता है या फेफड़े की बीमारी हो जाती है। तो इस तरह से मैं आपको बताएंगे, 5 मिनट में अपना अनुभव सुनाएंगे कैसे उनकी क्या बीमारी थी और कैसे वो ठीक हुए इस जीवन शैली से।
ओम शांति। मैं आत्मा हूँ, शरीर का नाम ज्ञान सिंह, गांव गक्षिणा, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा का रहने वाला और काम हमारा खेतीबाड़ी का। तो जैसे मैं अपना थोड़ा अनुभव सुनाऊंगा शॉर्ट में, जैसे गांव का जीवन है तो बचपन में ही संघ के कारण बुराइयां लगी, बीड़ी पीना शुरू कर दिया, थोड़े बड़े हुए स्कूल से छिपना, शहर जाके पिक्चरें देखना, घर से बाहर रहना, थोड़ा मैं बचपन में आवारा टाइप का ही बच्चा था। तो फिर मेरे से दो बड़े भाई थे और खेती का काम करते थे, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं थी। तो अचानक हुआ, ऐसा हुआ कि मेरे दो भाइयों ने ट्रैक्टर पलटने से शरीर छोड़ दिया, तो 1994 में। तो मेरे उससे पहले कोई जिम्मेवारी नहीं थी। तो जब मैं बीड़ी पीता था, शराब पीता था, तो कोई तनाव भी नहीं था। जब मेरा शराब से भी तनाव दूर नहीं होया वो एक्सीडेंट के बाद, तो मैंने अफीम खानी शुरू कर दी। तो इतने ज्यादा मैं तनाव में रहने लग गया था। और 2003 के अंदर मेरे को हार्ट अटैक हुआ। जैसे गांव का जीवन था तो जोड़ा छाप जो डॉक्टर थे उन्होंने दवाई दिया, हमें ये भी नहीं पता था हार्ट अटैक क्या होता है। मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे ये नकली अफीम है ना, चूहे मारने की दवाई या कुनेन की गोलियों मिला के ऐसे देते हैं, मखा उसकी वजह से ये गैस प्रॉब्लम है, उल्टी आ रही है, पसीना आ रहा है, तो ये कारण हमने समझा। तो फिर एक दो दिन के बाद फिर मेरे को दर्द हुआ, तो मैं करनाल में जाके एक आईसीयू में भर्ती हुआ। तो उन्होंने बताया आपको तो जबरदस्त अटैक हुआ है, तो उन्होंने मेरे को दिल्ली एक बड़े हॉस्पिटल में भेज दिया। तो वहां मैंने एंजियोग्राफी कराई, तो मेरे को 5 ब्लॉकेज निकले, 99%, 85%, 250 और 55%। तो उन्होंने कहा कि भाई आपने तो एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी, और उन्होंने एंजियोप्लास्टी मेरी कर दी, एक उसमें नस में डाल दिया। और उसके बाद भी जब मैं गांव में आया तो उन्होंने कहा कि भाई आपको ये बीड़ी सिगरेट शराब अफीम ये सब छोड़नी पड़ेगी। तो उससे पहले भी मैं बहुत कोशिश करता था, पूरे रिश्तेदार भी परिवार भी, कि भाई ये सब बुराइयां छोड़ दे, क्योंकि इसके दो भाई तो पहले चले गए, इसका भी नंबर आने वाला है। तो इस करके तो मेरे से डॉक्टर के कहने के बाद भी छूट नहीं रही थी। तो एक ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हुआ भाई था हमारे गांव का, हमारे पड़ोस में, उसने पता था कि इसके दो भाइयों ने पहले शरीर छोड़ दिया, अब इसको हार्ट की बीमारी होगी तो परिवार का क्या होगा। और हमने ये देखा कि जो जितने ब्रह्मा कुमार भाई बहने होती है ना, इनके अंदर बहुत ज्यादा सुभावना होती है कि किसी को दुख ना हो। तो उसने कहा कि भाई माउंट आबू के अंदर डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता जी हैं जो कैट प्रोग्राम चलाते हैं, कैट माना कोरोनरी आर्टरी डिजीज, और जो बिना चीरफाड़ के बिना ऑपरेशन के हार्ट का इलाज करते हैं। तो जब मैं 2003 में आया था, 2004 में आया यहाँ पे, तो मैंने डॉक्टर साहब को अपनी एंजियोग्राफी दिखाई, तो इन्होंने मेरे को बताया कि भाई आपको बीमारी बीमारी कुछ नहीं है, आप सिर्फ शांति प्यार और खुशी से रहो। तो मेरे को आधा घंटा सारा समझाया इन्होंने, यहाँ पर ओपीडी थी 6 नंबर उसमें। तो मेरे को उस टाइम ऐसा लगा कि मेरी आधी बीमारी खत्म होगी समझाने से ही। तो और फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि जब यहाँ कैड प्रोग्राम चलेगा तो आपको अपनी वाइफ के साथ, अपनी पत्नी के साथ हम बुलाएंगे। तो अगस्त 2004 में कैड प्रोग्राम चल रहा था, 16 अगस्त से 24 अगस्त, तो उस प्रोग्राम में मैं आया था 4 में। तो डॉक्टर साहब यहाँ एक पार्क है अच्छा सा, उसमें 50 पेशेंट बुलाते हैं और 10 पुराने दिल वालों को, तो सैर कराते हैं पहले दिन। तो उससे जब ये पहले दिन सैर कराई मेरे से, तो उसमें पार्क में एक चक्कर भी नहीं लग पा रहा था, क्योंकि मेरे को 4-5 बीमारियां थी, मेरा सांस बहुत ज्यादा फूलता था, एसिडिटी थी, एक्जिमा था, तो और ये कार्ड का हार्ट की ब्लॉकेज तो थी। तो जब मैं 2004 के अंदर अगस्त में आया तो ये सैर कराते थे डॉक्टर साहब सभी पेशेंट को, तो मेरे से एक चक्कर भी नहीं लग पा रहा था। और जब मैं खेत में जाता था मोटरसाइकिल से या ट्रैक्टर से जाता था, पैदल नहीं जा सकता था क्योंकि बहुत ज्यादा सांस फूलता था और छाती में दर्द होता था। तो फिर जैसे ये 7 दिन का प्रोग्राम चलता है, तो डॉक्टर साहब ने बताया, सबसे पहली बात मेरे को यही समझ में आई कि भाई आप शरीर नहीं आत्मा हो। और आत्मा के मुख्य सात गुण हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां। और शरीर के मुख्य आठ अंग हैं, जैसे ब्रेन, हमारी पांच कर्म इंद्रियां, फेफड़े, हार्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट और हार्मोन सिस्टम, और हमारी हड्डियां, मसल और ज्वाइंट्स। तो इन डॉक्टर साहब ने बताया कि ज्ञान का संबंध हमारे ब्रेन से है, और पवित्रता का संबंध हमारी कर्मेंद्रियों से है, ह्यूमन सिस्टम से है, और शांति का संबंध हमारे फेफड़ों से है, और हार्ट का संबंध हमारे दिल से है, सुख का संबंध हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से है, खुशी का संबंध हमारे लीवर से है, और हार्मोन का सिस्टम हमारे, आनंद का संबंध हमारे हार्मोन सिस्टम से है। तो जब डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई अपने आप को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करेंगे और आनंद की स्थिति में होंगे तो अंदर से एंडोर्फिन निकलेगी, तो उसी समय मेरे को क्लास में ये टच हुआ कि जब अंदर से असली अफीम बढ़ रही है तो बाहर से नकली अफीम खाने की क्या जरूरत है। तो मैंने उसी समय संकल्प किया कि आज के बाद मैं अफीम नहीं खाऊंगा। और अफीम का प्रायवाची शब्द है धर्म, और धर्म को छोड़ना दुनिया में सबसे मुश्किल बात है, और दुनिया में भी कहते हैं अफीम छोड़ना ऐसा है जैसे नौ से मांस दूर करने वाली बात है, क्योंकि जो डॉक्टर साहब कहते हैं ना वो इनके जीवन में है। तो हमारे युगल भी साथ में, हमारी पत्नी भी साथ में आई हुई थी, और पहले दिन एक इनोग्रेशन होता है, स्वागत सत्र, जैसे आप सभी का भी हुआ था, तो उसमें डॉक्टर बनारसी भाई जी आए थे, तो उन्होंने बताया कि भाई डॉक्टर हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और वीरवार के दिन हमारे यहाँ यज्ञ में भोग लगता है, उसमें जलेबी भी बनती है, मालपूड़ा भी बनता है, हलवा भी बनता है। जब हम एक साथ बैठ के खाना खाते हैं डॉक्टर साहब के साथ, तो हम कहते हैं तो वीरवार का भोग है डॉक्टर साहब, आप भी थोड़ा खा लो। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि यदि मैं खाऊंगा तो मेरे पेशेंट पे क्या असर पड़ेगा। तो इसका हमारे युगल बिल्कुल अनपढ़ थे, उसने सबसे अच्छी बात यही लगी थी कि आज दुनिया में कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए परहेज नहीं करता, कोई बच्चा अपने माँ बाप के लिए परहेज नहीं करता, कोई रिश्तेदार नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। तो यहाँ डॉक्टर भी है ना मरीज के लिए परहेज करते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात हमारे युगल के लगी थी। तो डॉक्टर साहब जो खाना पेशेंट को खिलाते हैं वही खुद खाते हैं। तो फिर जैसे जैसे हमने 3 महीने के अंदर ये प्रोग्राम फॉलो किया, तो खेत में हमारा खेती का काम था, मजदूर के काम पे लगे हुए थे, तो 2-3 तो मेरे से 3 महीने हो चुके थे उस टाइम, और मेरे को वो मंगा रहा था कि अब मैं ठीक हो गया। तो मजदूरों के साथ मैंने अपना जैसे 6-7 बजे काम शुरू किया उनसे पहले, और उनसे ज्यादा काम किया, उनसे और उनसे कसी से उनसे ज्यादा काम किया। उस दिन मेरे को ये हो गया था कि मेरी सारी ब्लॉकेज खुल गई है, और मैंने ये अनुभव किया क्योंकि मेरे साथ में लड़का भी था कि जैसे 15-16 साल के आरट होता है ऐसा मेरा आरट है, ये कैट प्रोग्राम की वजह से हुआ। और फिर हम जैसे गांव में गए तो पता लग गया कि भाई ये ब्रह्मा कुमारी में जाता है, तो एक भाई ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी मैं कहां जाने लग गया आप, ये तो अमीरों की संस्था है। जब मेरे को 5-6-7 महीने हो गए थे ना, मेरी उस टाइम 82 रुपए की दवाई थी, मीट मांस शराब तांस जुए का खर्चा था, मेरे काफी पैसे बचे। तो मैंने अनुभव किया प्रैक्टिकल में कि ब्रह्मा कुमारी अमीरों की संस्था नहीं है, जो इसमें आएंगे वो अमीर बन जाएंगे, ये मैंने खुद अपने अनुभव किया, क्योंकि मेरी सारी दवाई छूट गई, सारे व्यसन छूट गए, और हमारा घर बिल्कुल जिसके घर में तांस जुआ बीड़ी सिगरेट अफीम शराब हो तो उस घर में शांति नहीं रह सकती। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम एक घर में पति पत्नी एक छत के नीचे रहते हैं, एक कमरे में रहते हैं, और पूरे 12 साल से ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, और बिल्कुल मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारा घर आज आश्रम से भी अच्छा है। ये ब्रह्मा कुमारी की देन है, क्योंकि दुनिया में हमने ज्ञान बहुत सुना था उससे पहले भी, जैसे मैंने अफीम के आदि था, नशों का आदि था, तो मैं अनेक नशा मुक्ति केंद्र में भी गया, महाराज और गुरुओं के पास भी गया, लेकिन वहां सब है ज्ञान देते हैं शक्ति नहीं देते, लेकिन ये मैंने अनुभव किया यहाँ ज्ञान के साथ शक्ति मिलती है। तो जैसे मेरा जीवन था बहुत खराब था, लड़ना झगड़ना सब कुछ मेरे अंदर था, तो हमने पुलिस थाना कोर्ट सब जेल देखे हुए थे। तो पहले हमारे को पुलिस कहती थी कि भाई सुधरो सुधरो सुधरो, और हमारा ब्रह्मा कुमारी के उसमें हमारे करनाल में एक मधुबन है, वहाँ पुलिस का सबसे बड़ा कैंपस है, तो मैं अपने बहनों के साथ जाता था, तो हमारे बहने भी हम भी ये कहते थे कि भाई आप सुधरो। तो पुलिस वालों को भी, तो वहां से भी पुलिस वाले काफी आईएएस ऑफिसर या एसआई जो भी ऐसे बड़े अफसर हुए आए, और हमारे गांव से कम भी 150-200 लोग आए कि भाई ये ब्रह्मा कुमारी में जाने से ऐसा आदमी बदल सकता है, तो ये जरूर परमात्मा का कार्य है। तो ये परमात्मा के बिना ये शक्ति नहीं मिल सकती, और ये जीवन बहुत अच्छा मेरे को यहाँ से मिला है। और दूसरी बात, 2008 में हम ग्राम विकास के प्रोग्राम में आए थे, तो उसमें हमने 2 एकड़ में बिल्कुल कोई केमिकल नहीं डालते, पूरा केमिकल फ्री है, और DWR हमारे करनाल में गेहूं अनुसंधान केंद्र, तो वहां का प्रयोग भी चल रहा है, और केमिकल से भी ज्यादा योग के प्रयोग से हमारी खेती भी हो रही है। ओम शांति। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने 3 महीने के अंदर जो दवाई खाई सो खाई, आज तक मैंने भी कोई लाइफस्टाइल की जो बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, कोई भी दवाई नहीं खाई, और मेरी 4-5 बीमारियां थी वो सब ठीक हो गई। एक्जिमा था, सांस फूलता था, एसिडिटी थी, कैट ये हार्ट की बीमारी थी, सब बिल्कुल निकल गई सिर्फ ये कैट प्रोग्राम से। इसमें
बहुत अच्छा
एडी से चोटी लग का इलाज है। एक बार एक एयरफोर्स के पायलट आए थे, तो उन्होंने भी कहा कि भाई उनका जीवन ही उससे चलता था, उन्होंने उस एयरफोर्स वाले ने उसको निकाल दिया था, तो जब वो प्रोग्राम करके आए, उन्होंने 1.5 या 2 महीने के बीच में अपनी एंजियोग्राफी दोबारा कराई, तो उसके सारे ब्लॉकेज निकल गए थे। मतलब मैंने 3 महीने में खोल ली, उन्होंने 1.5 महीने में खोल ली, और कम से कम भी 8-10 हजार पेशेंट तो यहाँ पर जिनकी फाइलें हैं, रिपोर्ट एंजियोग्राफी है, और ऐसे लाखों दिल वाले हैं या हार्ट पेशेंट हैं जिन्होंने इस कैट प्रोग्राम से फायदा लिया। ओम शांति।
बहुत अच्छा। तो मेन बात है कि हमारी जीवन शैली कैसी है, जीवन शैली बदलना है। और जीवन शैली क्या होती है, सुबह से हम सुबह कितने बजे उठते हैं, उठ के हम मेडिटेशन करते हैं कि नहीं करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, कितने बजे स्नान करते हैं, और नाश्ता कितने बजे करते हैं, लंच कितने बजे, डिनर कितने बजे करते हैं, हमारी दिनचर्या ओवरऑल कैसी है सुबह से लेकर रात तक सोने तक, और सोने में भी हम क्या करते हैं, इवन हम कैसे स्वप्न देखते हैं, ये भी जीवन शैली है, इसको हमें परिवर्तन करना है। आज की जीवन शैली कैसी है, प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है, डिमांड के ऊपर, और आज की शैली विकारों पर आधारित है, आज की जीवन शैली चिंता और टेंशन पर आधारित है। अगर राइट लिविंग करें तो हम हेल्थ और हैप्पीनेस पा सकते हैं। और एक हमारे अंदर घड़ी है हाइपोथैलेमस में, जब भी आपको मैंने दिखाया, हाइपोथैलेमस होता है दोनों ब्रेन का कंट्रोल रूम, उसमें घड़ी लगी है, उस घड़ी में, उसे जैविक घड़ी कहते हैं, उसमें सोने का समय है, सुबह उठने का समय है, मेडिटेशन करने का समय है, प्लानिंग करने का समय है, नाश्ता घूमने का समय है, उसमें सैर, उसमें आपको नाश्ता करने का समय है, काम करने का समय है, जो भी आपका ऑफिस या घर का काम उसे अच्छे से करने का समय है, लंच करने का समय है, रेस्ट करने का समय है, डिनर करने का समय है, और शाम के टाइम मेडिटेशन करने का समय है, और सोने के पहले अपने आप को ऑडिट करने का समय है। अगर आप उसमें एक्यूरेट करते हैं, खाली क्या खाना नहीं है, क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना, ये भी इंपॉर्टेंट है, सैर करनी कैसे सैर करनी है, सोना भी तो कैसे सोना है, वो सब कुछ उस जीवन शैली के अंदर इस घड़ी के अनुसार अगर आप करते हैं तो आपकी हर बीमारी, चाहे मन की हो चाहे तन की, ठीक हो जाती है। और स्ट्रेस क्या, तनाव किसे कहते हैं, प्रेशर डिवाइडेड बाय इनर स्ट्रेंथ, आपके अंदर कितनी आत्मिक शक्ति है, प्रेशर बाहर के हो सकते हैं, आपके अंदर के हो सकते हैं, वो बदल नहीं सकते हैं, उनको बदलना बहुत मुश्किल होता है, किंतु आप क्या बदल सकते हैं, अपनी आत्मिक शक्ति बढ़ा सकते हैं। आत्मिक शक्ति बढ़ा लें मेडिटेशन के माध्यम से, तो क्या होगा, आपके कितने भी प्रेशर वो आपके लिए नगण्य हो जाते हैं, और आप कभी भी हमेशा स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं, तनाव से मुक्त रह सकते हैं। हमने यहां देखा आने के बाद, हमारी दादियां, दादी जानकी 101 साल की हैं, और दादियां हमारे जो बड़े हैं वो सब स्ट्रेस फ्री रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर आत्मिक शक्ति बहुत है, कितने भी प्रेशर हो, 140 देशों में सेंटर्स हैं, और हर जगह की प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके बावजूद सदा मुस्कुराते रहते हैं, सदा हल्के रहते हैं, ये हमने देखा प्रैक्टिकली। और सिंपल है मेडिटेशन करने का तरीका, है क्या है, सिर्फ ABCD को रिवाइज। व्हाट इज मेडिटेशन, मेडिटेशन इज नथिंग बट रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ, सत्य को जीना, सत्य को अनुभव करना, सत्य ही देखना, सत्य में व्यवहार करना ही मेडिटेशन है। कोई आधा घंटा सुबह शाम मेडिटेशन नहीं, राजयोग मेडिटेशन का मतलब ये है, आधा घंटा सुबह शाम नहीं, चलते फिरते उठते बैठते अपने सत्य में टिके रहना, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मेरा उससे क्या संबंध है, और संसार रूपी नाटक को साक्षी होकर के देखना, जो हुआ अच्छा हुआ, मेरे कर्मों के अनुसार हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि अब परमात्मा मेरे साथ है, और जो होने वाला सबसे अच्छा होने वाला है। इस तरह से इस ABCD को हम रिवाइज और रियलाइज करते रहते हैं, तो यही मेडिटेशन है, इसके द्वारा हमें ऑटोमेटिक आत्मा शक्तिशाली हो जाती, आत्मा की शक्ति बढ़ जाती, सातों एनर्जी से भरपूर हो जाती। सातों प्रधान का मतलब आत्मा सातों गुणों से भरपूर हो जाती और ऑटोमेटिक उसका कंट्रोल, मन बुद्धि संस्कार उसे कंट्रोल में आ जाते, पांचों कर्मेंद्रियां उसे कंट्रोल में आ जाती, शरीर के आठों अंग उसे कंट्रोल में आ जाते और आत्मा राजा बन जाती। यही राजयोग मेडिटेशन है। और इसका जो हेल्थ का फार्मूला सिर्फ यही है, हेल्दी माना हील प्लस डाई, अर्थात हील डाई सेल्फ, अर्थात सारे संसार में एक ही व्यक्ति जो आपको हील कर सकता है वो सिर्फ कौन है? सिर्फ आप हैं। डॉक्टर आपको हील नहीं कर सकता है, आपके माता पिता आपको हील नहीं कर सकते हैं, भगवान भी आपको हील नहीं कर सकता है। डॉक्टर आपको गाइड कर सकता है, आपके माता पिता भाई बहन आपके साथी आपको मदद कर सकते हैं, वो भी अगर आपने मदद की होगी तो एक गुना आपकी मदद कर देंगे, क्योंकि भगवान क्या करेगा, आप एक कदम उसकी तरफ चलेंगे तो आपको 100 गुना आपकी मदद करेगा। ये फर्क है। तो पहली बात है हेल्दी सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी जिम्मेवारी है, हमें अपने आप को हेल्दी करना है। बीमारी भी हमारे कारण हुई है और ठीक भी हमें ही करना है। पहली बात हम लोगों को ये सिखाते हैं अपने दिल वालों को। दूसरी बात क्या सिखाते हैं? हेल्दी माना स्वस्थ। स्वस्थ शब्द दो शब्दों से बना, स्व प्लस अस्थ। स्व माने आत्मा है और अस्थ माना स्थित है। तो जो आत्मिक स्थिति में स्थित है वो सदा स्वस्थ है। और मैं आपको बताऊं, हमारे अंदर एक हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा है। ये हमारा दोनों ब्रेन का कंट्रोल हाइपोथैलेमस है, उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड, उसके पीछे पीनल ग्लैंड है, नींद वाले से नींद के हार्मोन निकलते हैं। गले में थायराइड ग्लैंड है, उसके पीछे पैराथायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड एनर्जी की ग्लैंड है, पैराथायराइड हड्डियों की ताकत के लिए कैल्शियम डालने के लिए वो ग्लैंड है, पैनक्रियाज इंसुलिन निकालती है, फिर हमारे एड्रिनल ग्लैंड है चैलेंज को फेस करने के लिए हार्मोन निकलते हैं, और हमारी सेक्स ग्लैंड है। ये 7 ग्लैंड है। अगर आपके अंदर शांति प्यार खुशी है, आप अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं, तो आपके अंदर शांति प्यार खुशी की अनुभूति आप करते हैं, तो आपका ये 7 ग्लैंड्स के हार्मोन बैलेंस में निकलते हैं और आप सारी टाइम जैसे आपका जीवन संगीत बन जाता है, म्यूजिक बन जाता है। अगर आपके अंदर डर है, चिंता है, गुस्सा है, तो ये हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा बिगड़ जाता है और जीवन शोर बन जाता है। तो इसलिए हमें आवश्यक है कि अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, सोल कॉन्शियस बनना होगा। हेल्दी माना सोल कॉन्शियस। और तीसरी बात जो है, इसको मैं छोड़ देता हूं, ये है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। हमें मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, आदमी खाली बॉडी नहीं है, सबसे पहले आत्मा है, उसके बाद उसका आत्मा की एक शक्ति मन है, और मन के माध्यम से आत्मा शरीर को नरिश करती है, और आत्मा की 7 एनर्जी से मन माना टीम, स्मृति वृत्ति भावना और संकल्पों के थ्रू वो 7 एनर्जी बॉडी की 8 अंगों में जाती है और वो उसको नरिश करती है। कोई अंग में बीमारी क्यों होती है? क्योंकि वो उस एनर्जी की कमी हो जाती है, उससे वो बीमारी होती है। तो हमारे इस प्रोग्राम में हम लोगों को सिखाते हैं इन्फॉर्मेशन एजुकेशन काउंसलिंग, पहले उनको सूचना देते हैं कैसे हमारा शरीर कार्य करता है, हमारा दिमाग कैसे काम करता है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, संस्कार क्या है, आत्मा क्या है, और कैसे परमात्मा से हमें जोड़ना है उसको, हमारा खानपान कैसा होना चाहिए, हमारा चलना कैसा हो, नींद कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना चाहिए, और फिर आत्मा मन और तन तीनों का बैलेंस करके तीनों एनर्जी की हार्मनी करने से हम स्वस्थ रह सकते हैं। और यही दिखाया गया है कि ह्यूमन बॉडी के दो एस्पेक्ट है, ह्यूमन बॉडी, वो एक उसका एक वर्ड है, उसको हम कहते हैं ह्यूमस, लैटिन वर्ड है, वो आया है, उसका मतलब होता है सॉयल, मिट्टी, और बीइंग माना लाइफ फोर्स माना आत्मा। तो एक इंसान 2 चीज से बना, सॉयल और सोल, सॉयल में आई है और सोल में यू है। तो जब आप सॉयल कॉन्शियस मतलब बॉडी कॉन्शियस होते हैं तो आपके अंदर आईनेस और माइनस आती है, ईगो और अटैचमेंट आ जाती है, और जब आप सोल कॉन्शियस है तो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस आती है, अर्थात आप सारे विश्व को वसुदेव कुटुंबकम की फीलिंग से चलते हैं। और जब आप आउटर सेल्फ कॉन्शियस है, बॉडी कॉन्शियस, रोल कॉन्शियस, मेटेरियल कॉन्शियस, तीनों के तीनों अनस्टेबल है, इनसिक्योरिटी पैदा होती है, इस इनसिक्योरिटी से 5 विकार पैदा होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पैदा होते हैं, और उससे ही आपका नेचर टाइप ए नेचर, हर बात में जल्दीबाजी करने की आदत, ईर्ष्या की आदत, आलस्य, अलबेलेपन की आदत, दूसरों में दोष निकालने की आदत, बदलने की भावना, शक, अनुमान और चिंता, भय पैदा होता है, और उससे आप तनाव महसूस करते हैं। फिर जैसा मूड बनता है, गलत मूड तो गलत खाना खाते हैं, ऐसी काफी सारी रिसर्च हुई है कि रॉन्ग मूड से रॉन्ग फूड खाते हैं। अगर आप अंदर कड़वाहट महसूस करते हैं मीठा खाते हैं, ड्राई महसूस करते हैं तो फ्राइड खाते हैं, बहुत बोरिंग महसूस करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप चटपटा खाने की कोशिश करते हैं, और ऐसा व्यक्ति को नींद नहीं आती है, वो लेट सोता है, लेट उठता है, और ऐसा आदमी सैर नहीं करता है, और ऐसा आदमी जल्दी ही स्मोकिंग करने और शराब के वश में हो जाता है, तो इससे आदमी हमेशा बीमार रहता है। इसकी बजाय अगर आप इनर सेल्फ कॉन्शियस हो जाएं, अपने आत्मिक स्थिति में टिके रहें, तो ये स्टेबल स्थिति है, ये इसमें फुल प्रूफ सिक्योरिटी है। और आत्मा के सात गुण, जब अपने को आत्मा समझेंगे, सातों गुण आपके जीवन में आने लगते हैं, परमात्मा से आपके अंदर वो एनर्जी फ्लो करने लगती है, और इन सातों गुण जब आत्मा में भर जाते हैं, कर्मों में वैल्यूज दिखाई देती है, सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, अंतर्मुखता दिखाई देती है, और यही जी स्ट्रेस फ्री लाइफ है। जो आउटर सेल्फ कॉन्शियस व्यक्ति है वो खाने के लिए जीता है, और जो इनर सेल्फ कॉन्शियस व्यक्ति है वो जीने के लिए खाता है, वो हेल्दी फूड खाता है, उसको समय पर जल्दी सो जाता है, जल्दी उठ जाता है, वो सैर करता है, और ऐसा व्यक्ति सदा मुस्कुराता रहता है। ऐसे व्यक्ति को ना चाय पीने की आवश्यकता है, ना कॉफी पीने की आवश्यकता है, ना कोल्ड ड्रिंक्स पीने की आवश्यकता है, ना शराब और सिगरेट पीने की आवश्यकता है, और ऐसा आदमी सदा हेल्दी हैप्पी रहता है। और मैं इसको स्किप, ये देखिए आप इस चित्र में देख सकते हैं, आत्मा के पास सात एनर्जी है, ये बीच में मन माध्यम है। जैसे मुझे आपको ये देना है तो मुझे आपको हाथ से देना होगा, और आप कैसे लेंगे, अपने हाथ से लेंगे ना, तो ऐसे आत्मा जो भी शक्ति देती है मन के माध्यम से शरीर को देती है। तो मन अगर आपका पॉजिटिव होगा तभी आप दे पाएंगे, अगर आपकी टीम पॉजिटिव होगी तभी आप दे पाएंगे, अगर टीम नेगेटिव होगी तो एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी। और ये सातों एनर्जी बॉडी की हर कोशिका को आवश्यक है, किंतु ब्रेन के लिए आपको ज्ञान चाहिए। पवित्रता से आप अपनी पांचों कर्म इंद्रियों को और इम्यून सिस्टम को नरिश करते हैं, शांति से लंग्स को नरिश करते हैं, प्यार से हार्ट को नरिश करते हैं, खुशी से लीवर और पेट को नरिश करते हैं, आनंद से हार्मोन्स को नरिश करते हैं, और आनंद और शक्तियों से जोड़ों को नरिश करते हैं, हड्डियों को नरिश करते हैं, और शक्ति और सातों एनर्जी मिलकर बॉडी से टॉक्सिन्स किडनी के द्वारा बाहर निकालती हैं। और जितना आप अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं, सातों एनर्जी आपके अंदर आती है, टीम आपकी अगर पॉजिटिव है तो आप देखेंगे आपके चारों तरफ ऑरा इकट्ठा हो जाता है, आभा मंडल बन जाता है, और वो ही हमारा आभा मंडल होता है। जितना आप परमात्मा को याद करेंगे, टीम को पॉजिटिव रखेंगे, खान पान आपका शुद्ध होगा। इसमें यही बताया गया, चार से पांच, अगर आप आधा घंटा, ये रिसर्च में देखा गया है, हमने DRDO से मिलकर रिसर्च की, हमने देखा अगर आप आधा घंटा आनंद की स्थिति में रहें, चार से पांच, जिसे ब्रह्म मुहूर्त का मेडिटेशन कहते हैं, तो उस आनंद की स्थिति में हमारे हाइपोथैलेमस से 9 हार्मोन्स, पिट्यूटरी से 8 हार्मोन्स और पीनियल से 1 हार्मोन, 18 हार्मोन्स बैलेंस में निकल जाते हैं। और अगले 24 घंटे में आपकी जो भी मन की बीमारियां, तन की बीमारियां, डिप्रेशन है, नींद नहीं आती, या और कोई बीमारी है मन की और तन की, जो भी बीमारी है आपको, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, माइग्रेन है, पेट की बीमारी है, अस्थमा है, एक्जिमा है, वो सब बीमारियां अगले 24 घंटे कम हो जाती है। अगर एक चार से पांच के बीच में आप आनंद की स्थिति में नहीं रहते हैं तो आपकी सब बीमारियां बढ़ जाती है। तो इसलिए चार से पांच का मेडिटेशन मस्ट है, हम सबके लिए मस्ट है, बच्चों के लिए भी, जवानों के लिए, बूढ़ों के लिए भी। और जब ये एनर्जी जब आपके अंदर आ जाती है तो अब ये यहां आ गई, किंतु बॉडी में कैसे जाएगी, जब आपकी टीम पॉजिटिव होगी। तो 8 बजे तक हम चुप रहते हैं, 8 बजे तक अपनी टीम को पॉजिटिव रखते हैं, ना टीवी देखते हैं, ना अखबार देखते हैं, ना मोबाइल देखते हैं, क्योंकि इन सबसे नेगेटिव टीम आती है, नेगेटिव विचार, नेगेटिव भावनाएं, नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव स्मृति आती है। और ये पॉजिटिव स्मृति हमारे अंदर आए, इसके लिए हम परमात्मा महावाक्य से मुरली कहते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, वो सुनते हैं, और 8 बजे के बाद ही व्यवहार में आते हैं। मतलब 8 बजे का समय हमारे लिए है, क्योंकि 8 बजे उठने के आधे घंटे बाद से कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन एड्रेनल ग्लैंड से निकलने लगता है, जो भी जीवन में चैलेंज फेस करने उसके लिए। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे हार्मोन्स कॉर्टिसोल बैलेंस में निकलता है, और वो एनर्जी हमारी बॉडी के सेल्स में पहुंच जाती है। और फिर ये एनर्जी बॉडी के सेल्स के बाहर ही कब निकलेगी, जब आपका भोजन शुद्ध सात्विक भोजन होगा, फल, सब्जी, अंकुरित दलिया, चावल, है ना, ऐसी चीजें, दूध, सात्विक भोजन लेंगे, शुद्ध सात्विक भोजन, परमात्मा की याद में बना हुआ, सातों गुणों को बढ़ाने वाला भोजन, सात्विक माना सात गुणों को बढ़ाने वाला भोजन, चबा चबा के खाएं, जल्दी में ना खाएं और चुप रह करके खाएं। तो ये भोजन समय पर खाएं, सुबह नाश्ता 7 से 8, 8 से 9, लंच 1 से 2, डिनर शाम को 6 से 7 के बीच में करें, और फिर शुद्ध सात्विक सैर, परमात्मा की याद में सातों गुणों का अभ्यास करते हुए सैर करते हैं 45 मिनट सुबह, और सोने के समय अपने आप को ऑडिट करके सारा दिन का हिसाब किताब देख के हमने क्या सोचा, क्या गलत किया, 9:30-10 बजे सो जाते हैं, और फिर हम सुबह 3:30 बजे उठ जाते हैं। तो समय पर सोते हैं, समय पर उठते हैं, और प्रॉपर यूज ऑफ मेडिसिन, जो हिसाब किताब है दुनिया में हमारे लोगों के साथ, उसके लिए दवाई भी खानी होती है, धीरे धीरे दवाइयां खत्म हो जाती हैं। अगर हम ये करते हैं तो हमारे आसपास वो एनर्जी इकट्ठी हो जाती है, वो हमारा आभा मंडल बन जाता है, और वो हमारा एक तरह से हीलिंग एनर्जी का आभा मंडल बन जाता है। इस तरह से हम उसका प्रयोग करते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम से कैसे लोगों की बीमारी ठीक हुई, ये हमने रिसर्च की जो कि हमारी रिसर्च पब्लिश भी हुई 2011 में पब्लिश हुई और आज वर्ल्ड में टॉप 20 स्टडीज में नंबर वन पे है। पिछले 3 साल से सबसे ज्यादा लोगों ने इसको इस रिसर्च को पढ़ा, अपने रिसर्च में साइट किया और इसकी टॉप 20 स्टडीज में नंबर वन पे आई। और इसमें हमने सिर्फ यही किया था कि इसमें राजयोग मेडिटेशन नहीं कराया ग्रुप को, दूसरे को कराया था। और हमारे 80% पेशेंट दो आर्टरी या 3 आर्टरी ब्लॉक वाले थे। मैं आपको लास्ट में ले जाता हूँ, सिर्फ एंजियोग्राफ दिखाता हूँ। ये हमने ईजी भी किए थे लोगों के, देखेंगे एक हफ्ते में ही जो बीटा रिदम थी, अल्फा रिदम पीसफुल रिदम होती है, बीटा रिदम थीटा रिदम लवफुल रिदम होती है और डेल्टा रिदम हैप्पी ब्लिसफुल रिदम होती है। एक हफ्ते में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो अल्फा रिदम ऊपर वाली बढ़ गई है, बीटा रिदम कम हो गई है, थीटा रिदम बढ़ गई है, मतलब प्यार बढ़ गया है और खुशी और आनंद बढ़ गया है। तो मैं इसको यहां से मैं एंजियोग्राम्स पे आ जाता हूं। हमने हार्मोन्स भी स्टडी किए थे, ईईजी भी किया था, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी की थी, कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल 31% कम हो गया, गुड कोलेस्ट्रॉल 16% बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड 31% कम हो गए और हमारे 93% पेशेंट्स के ब्लॉकेजेस खुले। कैसे खुले आप देखिए, ये देख रहे हैं आप, इधर 80% ब्लॉक है, ये वो खुल गया है, एक इतना लंबा ब्लॉक है इसकी एंजियोप्लास्टी बाईपास वो भी खुल गया है और देखें 100% ब्लॉक भी खुल गया है, एक दूसरा 100% ब्लॉक खुल गया है। ये मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, सारे खुल गए हैं, 80% और 90% ब्लॉक खुल गया है। इस पेशेंट को 2 बार हार्ट अटैक आया था, इसका हार्ट बड़ा हो गया था, हार्ट की पंपिंग पावर 30% हो गई थी, दोबारा एंजियोग्राम कराने पर उसके हार्ट की पंपिंग वापस 45% हो गई, नॉर्मल 60% होती है। इस पेशेंट का 80% ब्लॉक था वो खुल गया है और इसमें देखिए इसकी हार्ट की पंपिंग 20% रह गई थी। ये वीडियो क्लिप्स हैं, शायद काम नहीं कर रहे हैं, और रिपीट करने पर हार्ट की दीवार नहीं बन गई, हार्ट की पंपिंग 50% हो गई और देखिए 100% ब्लॉक खुल गया। कंट्रोल ग्रुप में सारे ब्लॉक्स बढ़ गए हैं। इस रिसर्च में हमने पाया है कि हर ब्लॉक के पीछे हमारे मन का कारण होता है, कोई ब्लॉक उसी जगह पर क्यों होता है। आप जीरो ऑयल डाइट खाने से या एक्सरसाइज करने से उस ब्लॉक को नहीं खोल सकते, जब तक आप मन के विचारों को नहीं बदलेंगे तब तक आपका ब्लॉक नहीं निकलेगा। हमने पाया किसी पेशेंट को 6 ब्लॉक है, 5 जैसे बताया अभी यान सिंह ने, उसको 5 ब्लॉक थे, उस 5 ब्लॉक के लिए अलग 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 5 विचार अलग तरह के विचार हैं, 5 तरह के, उसने जो वो परिवर्तन कर लेगा वो ब्लॉक निकल जाएगा और जो परिवर्तन नहीं करेगा वो नहीं निकलेगा। आप ऊपर आ जाओ प्रदीप शेट्टी जी, ऊपर आ जाओ। तो हमने देखा इस पेशेंट के ब्लॉक बढ़ गए, जब इसने राजयोग मेडिटेशन किया तो इसके ब्लॉक निकल गए, ऐसे ही देखिए ब्लॉक बढ़ गया है। एक पेशेंट की और 100% ब्लॉक है इसकी, ये आर्टरी यहां 100% ब्लॉक है, रिपीट करने के बाद वो ब्लॉक खुल गया है पूरा का पूरा। तो ये बेसिक यही बात है कि हमारा स्पिरिचुअल केयर बी नेचुरल, ये मत समझो कि मैं अपना नाम आपके शरीर का नाम है, जो आप काम करते हैं वो आपके रोल है समाज में, वो आप नहीं है, वो आप रोल है आपका। सदा चलते फिरते ये अनुभव करें मैं आत्मा हूं और अपने आत्मा के सातों गुणों को बार बार फील करें, और इसके लिए सुबह 4 से 5 आधा घंटा मेडिटेशन करें और उससे आपका पिट्यूटरी से हार्मोन बैलेंस में निकलेंगे और आनंद की स्थिति का अनुभव करें। मेंटल केयर 8 बजे तक चुप रहें, 7 से 8 मुरली सुने परमात्मा की, और इससे आपका हार्मोन्स एडिनल हार्मोन्स बैलेंस में निकलेंगे। और बॉडी के लिए ईट नेचुरल, फल सब्जियां अंकुरित दलिया रोटी सब्जी दाल चावल खाएं और समय पर खाएं, चबा चबा के खाएं, सुबह 45 मिनट सैर करें सूर्य उदय के बाद और आधा घंटा शाम को सूर्य अस्त के पहले सैर कर लें, 10 बजे सो जाएं, 4 बजे उठ जाएं और प्रॉपर दवाई की अगर आवश्यक दवाई भी ले लें। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप पाएंगे कि आप बहुत ही सदा स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। और मैं अपने आपके सामने अंत में हमारे एक दिलवाले हैं प्रदीप शेट्टी, वो आपको 2 मिनट अपना अनुभव शेयर करेंगे कैसे उनका जीवन बदला। वो एक बैंक में ऑफिसर थे बॉम्बे में, और कैसे उनका जीवन इस प्रोग्राम में आने से बदला, इन्होंने कैसे अपना जीवन शैली परिवर्तन की और आज सदा स्वस्थ हैं, सदा खुश हैं।
ओम शांति। मैं एक आत्मा हूं, शरीर का नाम प्रदीप शेट्टी है, बंबई से आया हूं और बैंक का मैनेजर हूं मैं। 2005 में मुझे हार्ट अटैक आया, जैसे मेरे दो दोस्तों के बारे में आपने अभी सुना कि उनको बहुत सारी आदतें थी, मुझे कोई चीज की आदत नहीं है, मैं चाय तक नहीं पीता हूं, मुखवास तक नहीं खाता हूं, फिर ऐसे आदमी को हार्ट अटैक कैसे आए, क्योंकि मुझे कोई चीज की आदत नहीं थी, सिर्फ एक ही आदत है, सवेरे से लेकर रात तक काम 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 काम, बैंक का मैनेजर हूं बॉम्बे के ब्रांच का, तो सवेरे 9 बजे ब्रांच खोलता था, रात को 9 बजे बंद करता था। मुझे कोई चीज की आदत नहीं। सवेरे 5 बजे उठकर मलबार हिल एरिया में रहता हूँ बॉम्बे के, वहां से चौपाटी पूरा चल के जाता था 20 साल। तो ऐसे आदमी को हार्ट अटैक क्यों आना चाहिए? मेरे 50वें सालगिरह पे, एग्जैक्टली 50वां सालगिरह था, उसी वक्त मुझे हार्ट अटैक आया। मुझे पता ही नहीं चला क्यों आया। उस वक्त मैं बॉम्बे हॉस्पिटल, बॉम्बे हॉस्पिटल उसके ब्रांच, मेरे उस बिल्डिंग में मेरी ब्रांच थी, वहां मैं काम करता था। तो जाके जब डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने कहा कि आपको 2 घंटे पहले हार्ट अटैक मैसिव आ गया था। मैंने कहा क्या बात कर रहे, अभी तो मैं ऑफिस से आया हूं। फिर मुझे लैब में लेके गया, कैथ लैब में लेके गया, फिर वहां पता चला कि मुझे एलईडी में 100% ब्लॉक आया, एंजियोप्लास्टी हो गया, 4 लाख का बिल हाथ में आया। दूसरे दिन 4 दिन के बाद मुझे घर छोड़ा गया। 45 दिन घर में रहा, रोज रोज बस यही बात चलती थी कि क्यों मुझे हार्ट अटैक आया। क्योंकि जैसा मैं आज हूं वैसा ही मैं पहले भी था। मुझे कोई चीज की आदत नहीं, मेरी फैमिली में किसी को हिस्ट्री नहीं है, ना मैं मोटा हूं, ना डायबिटिक हूं, ना हाइपरटेंशन है मुझे, फिर हार्ट अटैक क्यों आ सकता है? मैं हर एक डॉक्टर से पूछा, उनका कोई जवाब नहीं मिला मुझे। फिर मेरी युगल जो है ब्रह्म कुमारी के साथ जुड़ी है, उन्होंने कहा चलो माउंट आबू में कैड का प्रोग्राम चलता है। तो ज्यादा पढ़ा लिखा होने की वजह से मैं ये चीजों में मानता नहीं था, ज्यादा साइंस और डॉक्टरों पर ज्यादा विश्वास था। तो 3 साल के बाद जब यहां आया, भाई साहब से मिला मैं, डॉक्टर गुप्ता से, उन्होंने कहा आपकी जीवन शैली बताइए। तो मैंने उनको कहा कि मैं बहुत फोकस्ड हूं, बहुत पंक्चुअल हूं, बहुत सिंसियर हूं, बहुत करियर कॉन्शियस हूं, बहुत टाइम में पंक्चुअल हूं, कभी 35 साल ब्रांच मैनेजर रह चुका हूं, कभी मैंने 1 मिनट कभी लेट नहीं गया हूं। 9 बजे सवेरे ब्रांच खुलता था, हालांकि ब्रांच खुलती है 10:30 बजे, मैं 9 बजे खुल के 9 बजे रात को आता था। तो उन्होंने कहा कि ये आपके 5 रीजन है हार्ट अटैक के, जल्दबाजी, चिंता, गुस्सा, छोटी छोटी बातों को फील करना, आप टिपिकल टाइप ए बिहेवियर के आदमी है। तब तक मुझे टाइप ए बिहेवियर क्या है पता ही नहीं था। टाइप ए बिहेवियर उन्होंने बताया कि टाइप ए बिहेवियर वाले को आज न कल न परसों न नरसों हार्ट अटैक आना ही है। जैसे जल्दबाजी है, जिसको चिंता है, जिसको छोटी छोटी बातों में फील होता है, वैसे आदमी को आज न कल हार्ट अटैक आना ही है। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा प्रोग्राम आप एक्यूरेटली फॉलो करो, आप ठीक हो जाओगे। अब मैंने जैसे कहा कि बॉम्बे हॉस्पिटल में 6 साल था, तो डॉक्टर सारे मेरे दोस्त थे,
जल्दी से
तो मुझे इनकी बात कोई हजम नहीं हुई। मैंने कहा चलो करके देखते हैं, और करके विश्वास कीजिए 45 दिन में मेरा हार्ट का जो पावर था, पंपिंग पावर था, वो 25 था। 45 सारी दुनिया में पता है, सारे डॉक्टरों को पता है, कोई ऐसी दवा नहीं, कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं, कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं जिससे हार्ट की पंपिंग पावर बढ़ती है। आम आदमी की पंपिंग पावर 56-60% है, मेरी 25 थी और 45 दिन में मेरी 60 हो गई। और सबसे बड़ी बात मेरे जीवन पूरा परिवर्तन करने की एक बात हो गई। मुझे 1 साल का था तब से अस्थमा था, दमा था, जो मेरे पिताजी को था, उनके पिताजी को था, उनके पिताजी को था, ये फैमिली हिस्ट्री में था ये। और ये जैसे प्रोग्राम मैंने एक्यूरेटली फॉलो किया, सवेरे 3 बजे से उठने से रात को 10 बजे तक जो भी मुझे बताया गया, और बहुत यूजर फ्रेंडली है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ नौकरी छोड़ के यहाँ आया था, मैं ब्रांच मैनेजर रहते हुए ये सारा फॉलो किया। तो आप समझ सकते हो ये प्रोग्राम कितना इजी है। तो जब मैंने ये फॉलो किया तो मेरा अस्थमा कहाँ चले गया पता नहीं चला। आज 8 साल हो गया मैं कोई अस्थमा की दवाई नहीं लेता हूँ, और इन 8 सालों में मैंने इतने डॉक्टर्स अप्रोच किए, एक डॉक्टर नहीं बता सका सिवाय डॉक्टर गुप्ता की कि मेरी अस्थमा कहाँ चली गई। 2014 में मेरे प्रोस्टेट में ट्यूमर डिटेक्ट हो गया, यहाँ गुजरात में नजदीक है यूरोलॉजिकल हॉस्पिटल में, वहां मैं चले गया। जब चले गया तो उन्होंने देखा कि इनका जो ट्यूमर का रिपोर्ट पहले था और बाद में था वो इतना फर्क आया, 6 महीने में मेरे प्रोस्टेट का ट्यूमर गायब हो गया। आज भी उस हॉस्पिटल के नोटिस बोर्ड पे मेरे रिपोर्ट लगाए हुए है, रिपोर्ट लगाई हुई कि पहला 70 साल के रिकॉर्ड में ये पहली केस है जिसको बिना दवा के इसका ट्यूमर ठीक हो गया है। तो आया था यहाँ हार्ट ठीक करने, जिंदगी कब ठीक हो गई पता नहीं चला।
सुना आपने? देखो ये जीवन शैली से, इसे राजयोग जीवन शैली भी कह सकते हैं, कि ना कि खाली हार्ट की बीमारी ठीक हो गई,
अस्थमा भी ठीक हो गया, ट्यूमर भी ठीक हो गया, सभी गंदी आदतें भी छूट जाती हैं, और कैसे हमारा जीवन बदल जाता है, तो ये है स्वस्थ एवं खुश रहने, खुशी जीवन जीने की कला। इसमें सिर्फ क्या करना है, अपने को आत्मा समझना है, अपने खान पान को शुद्ध और सात्विक बनाना है, सुबह शाम परमात्मा की याद में सैर करनी है, बोलते हुए सैर नहीं करनी है, बातें करते हुए सैर नहीं करनी, उससे और बीमार हो जाएंगे। सूर्य उदय के बाद सैर करनी है, सोना समय पर है, परमात्मा को याद करके सोना है, और सुबह जल्दी उठ के फिर मेडिटेशन करना है। और कोई भी अगर आपके अंदर आदत है चाय कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स पीने की या कोई भी ऐसी आदतें हैं तो उसको छोड़ देना है। तो ये अगर आप करेंगे तो आप सदा के लिए स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। यही मेरी आप सबके लिए शुभकामना है, सदा स्वस्थ रहें, सदा खुश रहें, और आने वाले समय में समाज की और अपने देश की सेवा करते रहें। ओम शांति।